ആയത്ത് നമ്പർ 218. ഇന്നല്ലസീന ആമനു വല്ലസീന ഹാജറു വജാഹദു ഫീ സബീലില്ലാ. बेशक जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की और अल्लाह की राह में जिहाद किया वही हैं जो अल्लाह की रहमतें बेपायों के उम्मीदवार हैं. उलाइका यरजून रहमतिल्लाह वल्लाहु गफूरुर रहीम. अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है. फील कर सकते हैं यहाँ ये आयत किनके बारे में? वो सहाबा जिनकी गलती से एक शख्स कत्ल हो गया और तुमने उनकी गलती को पकड़ लिया है और शोर मचा रहे हो, तुम्हें उनकी नेकियां नहीं याद. आमनु, पहले ईमान लाए. किन हालात में ये ईमान लाए थे? मक्का में, जब ईमान लाने की कीमत में पत्थरों भी लिटाया जाता था. तुम्हें उनकी नेकियां नहीं याद. फिर देखो तुमने इनको इतना सताया 13 साल में कि हाँ जरूर इन्होंने हिजरतें फिर की. क्या तुम्हें इनकी नेकी भूल गई? देखिए इससे हमें एक सबक मिल रहा है इनडायरेक्टली कि कभी किसी की नेकियों को फरामोश ना करो, जाया ना करो. इन मुसलमान कभी एहसान फरामोश नहीं होता. मुझे अपने वालिद की बात कभी नहीं भूलती और उसको जिंदगी में पल्लू से बांधा हुआ है कि कभी किसी दरख्त के नीचे से भी गुजर जाओ और धूप में वो तुम्हें साया दे देना तो कभी जिंदगी भर उस दरख्त का एहसान ना भूलना. कहाँ हम लोगों की नेकियों को भूल जाए. आज अच्छे हैं तो इतने अच्छे, कल बुरे बने तो कहेंगे आपसे बुराई कोई नहीं है. ये नहीं इस्लाम का मिजाज. तो सहाबा की नेकियों को उजागर किया जा रहा है कि ये बड़े प्यारे लोग हैं मेरे, इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए. बस जाहदु फी सबीलिल्लाह, इन्होंने जिहाद किया. हालांकि उस वक्त तक लिटरल कोई जिहाद नहीं हुआ होता, लेकिन अगर आप देखें ना ये तफसीर खास है जो टैक्स के साथ है, तो सहाबा ने हर कुर्बानी की. अब हो गए इनके हाथ से कतल, कोई बात नहीं, अल्लाह माफ करेगा क्योंकि वो गफूर रहीम है. देखिए आप इसको समझिए, अपने लिए समझिएगा कि सिंपल सी बात है. सबसे बड़ी चीज क्या है कि बंदा रब को ये दिखा दे कि मैं आपका हूं, आई एम योर्स, आई लव यू. जिस वक्त कोई बंदा हमें अपना मुखलिस होना साबित कर दे, नंबर एक, अपने घरों में ले ले. चलिए मिसाल दे देती हूँ, अल्लाह की बात तो समझ आती है लेकिन एक और बात समझ आ जाती है और वो क्या है कि लेट्स सी अगर आपके घर में एक पुराना मुलाजिम है 10-15 साल से, आपको पता है ये आपकी माँ के वक्त से आपके साथ है, नेक है, मुखलिस है, ये वो है, बहुत आपका मुखलिस है, आपका पैसा भी बचाता है, सिंसियर भी है, डिसेंट है. हो सकता है कभी किसी वक्त वो जुबान का तेज हो या उससे कोई गलती हो जाए, आपका नुकसान हो जाए, तो आप क्या करेंगे? गेट आउट, निकलो. अपना बंदा है ये, फिर भी अच्छा है. आज इसको निकाल के कोई नया ले आएंगे उसका क्या पता है ना. जिस बंदे की अपनाइत का आपको यकीन हो जाता है ना कि ये मेरे खिलाफ बात नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है, मैं नहीं मानती, फिर उस बंदे की बड़ी बड़ी खराबियां, खामियां, उससे नुकसान हो जाए ना तो हम इग्नोर करते हैं. अल्लाह का कानून इससे भी खुला. असल चीज जो मतलूब है ना अल्लाह को कि तुम इन्ना लिल्लाह, मैं तुम्हारी हूँ, इन्नी लिल्लाह, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महया. जब अल्लाह को यकीन है ना कि ये बंदा है मेरा, दुख पड़ता है मेरे दर पे आके रोता है, जरूरत पड़ती है मेरे दर पे आके रोता है, खुशी मिलती है मेरा बंदा, इसके बीमार है तो मेरा बंदा, परेशान है तो मेरा बंदा, तनहा है तो मेरा बंदा, लोगों में है तो मेरा बंदा, गर्मी सर्दी वेस्ट ईस्ट, इसकी जिंदगी में कोई फर्क ही नहीं है, तो अल्लाह कहता है फरिश्तों बस अब तुम बीच में से हट जाओ. हो सकता है क्यामत के दिन फरिश्ते कहेंगे अल्लाह देखो इस बंदे ने गीबत की थी, अल्लाह कहेगा इट्स ओके, पीछे हटो, बंदा मेरा है. अल्लाह देखो फलां दिन इससे इससे गलती से इस तरह हो गया था काम, देखो इसने इतना बड़ा गुनाह हो गया, नजर उठ गई थी, कोई बात नहीं, ये मेरा बंदा है, ये मतलूब है. इसको कहते हैं नल्लज़ीना आमनु, ईमान, बेशक. और याद रखिए कि ईमान सिर्फ बातें नहीं है. 5 चीजें लिखी आज ईमान की गहराइयां, ताकि हम सब अपने बचपन के पुराने ईमान को चेक कर सकें. वो जल्दी पुश्ती चीजें जैसे पता नहीं चलती ना, पुरानी हो गई हैं, खराब हो गई हैं, इस तरह हमारा ईमान भी नहीं पता चलता. पीछे पढ़ चुके आयत 177 में भी कि लैसल बिर्रन तुवल्लू वजूहकुम क़िबल अल-मशरिक वल-मग़रिब, ये नहीं है नेकी सिर्फ कि तुम मशरिक या मगरिब की तरफ खास डायरेक्शन में मुंह करके खड़े हो जाओ. वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाना. तो ईमान में 5 चीजें आती हैं. नंबर 1 ईमान बिल्लाह, नंबर 2 ईमान बिल आखिरा बल यौमिल आखिर, 3 ईमान बिल मलाइका फरिश्तों पे ईमान, और 4 ईमान बिल कुतुब किताबों पे, और ईमान बिल नबी जीन अम्बिया पे. बिल्कुल सूरत यही आयत 177 आयत जिसको इत्तिबार कहते हैं, उसमें यही तरतीब है। थोड़ा सा देख लेते हैं कि ईमान बिल्ला से क्या मुराद है। देखिए, जब हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं ना, तो इसका मानी क्या होता है कि हम जिंदगी की सबसे बुनियादी हकीकत को पा गए। अल्लाह बड़े से हमने अपना ताल्लुक जोड़ लिया, उससे जिंदगी गुजारने की इंस्ट्रक्शंस लेंगे, अल्लाह की जात को कमाल की हद तक मान लेता है बंदा। इस तरह से फिर वो अल्लाह ताला पर ईमान लाता है कि उसकी जिंदगी से तन्हाई खत्म। लिखिए अपने लिए ये चेकलिस्ट, बाद में आप खुद बना लें। अल्लाह पर ईमान लाने वाला कभी खुद को तन्हा नहीं पाता। हाय अमलून, क्या करूं, मेरा तो बाप भी नहीं है, शौहर भी नहीं है, माँ भी पास नहीं, बेटा भी नहीं, बेटी भी नहीं, ये हो ही नहीं सकता, क्या मन बिल्लाह की बात करो और बंदे की जिंदगी में तन्हाई का एहसास हो। दूसरी चीज, ईमान बिल्लाह के नतीजे में बेचारगी खत्म हो जाती है, मर्सी, पिटी फीलिंग, आई एम सो पिटी, मर्सीफुल, मैं बहुत बेचारा हूं, नेवर। फिर जब ईमान बिल्लाह होता है ना, तो इंसान को एक तीसरा यकीन आता है, और वो क्या कि मैंने एक ऐसा सहारा पा लिया है जो जिंदगी की ऊंच नीच में मेरी मदद करेगा। नशे वो फराज, कभी खुशियां कभी गम, कभी की रातें लंबी कभी के दिन लंबे, लेकिन मेरा रब मेरी मदद करेगा। और ईमान बिल्ला का एक चौथा असर इंसान की जिंदगी पे आता है कि सिर्फ वो मेरी जरूरतों ही से नहीं, मेरी ख्वाहिशात से भी आगाह है। इंग्लिश में समझ लें, अल्लाह सिर्फ मेरी नीड्स को फुलफिल नहीं करता बल्कि मेरी वांट्स को भी पूरा करता है। फिर इसके बाद एक और असर होता है इसका, और वो क्या कि कोई है जो मेरी दुआओं को सुनता है और उसको कबूल करता है। और ईमान बिल्ला का एक असर क्या होता है कि कोई है अब मेरा जो दुख सुख में मेरे जख्मों पे फाहे रखेगा और मुसीबतों और मुश्किलात में मेरी मदद करेगा, और अगर मैं कहीं फंस गई तो निजात देगा, मुझे खुलासी दे देगा दुनिया के झंझटों से। अब आप ये सब लेके अपने ऊपर लिखें, फिर आपकी जिंदगी में गम दिख सकता है। हमारे साथ होता क्या है, ये भी एक दुख की बात है, ये तो वो है जो होना चाहिए, होता क्या, कोई खुशी आती है तो अल्लाह को भूलते हैं। हम नहीं समझते उस वक्त कि हम भूल रहे, हम कहते हैं ये मेरा हक है। खुश रहने का तरीका ही क्या है कि रब को नाराज करो, ना खुश करो, खुशियां देने वालों को भूल जाओ। मिसाल है दौलत की बात करते हैं, बहुत माल है हमारे पास, तो बस हम भूल ही जाते हैं कि इस माल का अक्सर हिस्सा किस लिए है। हम कहते हैं वो जो चार छह रंगों के स्वेटर रह गए ना वो भी ले आऊं, वो जो पांच छह कलर के जूते नहीं थे ना वो भी ले लूं, क्योंकि मियां की जॉब अच्छी हो गई है, इस साल बहुत प्रॉफिट हो गया। हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ने हमें ज्यादा माल क्यों दिया। नतीजा क्या हुआ कि वो माल आसाइशों से भी बढ़ के आराइश और आराइश से बढ़ के नुमाइश पे लगने लगता है, जस्ट टू शो ऑफ, जरूरत के लिए नहीं उसके लिए, और इसी तरह फन पे और ख्वाहिशात के नाम पे। अब क्या हुआ, हम अल्लाह से दूर हो गए ना। पांच वक्त जो नमाज पढ़नी थी खुशू से, कि अल्लाह ने सहूलत से दिया, नरम गद्दा बिछा दिया जाए नमाज के नीचे, तो हम उसी के कंफर्ट में खो गए। बहुत गर्मी हुई तो सोने ही लग गए, नींद आंखी ना खुली, मोटा कंफर्टर आया सो गए, यानी ना खुशी में मैं तेरी बनी। अच्छा अब क्या हुआ, गम आ गया, अल्लाह ने हाथ खींचा, लगाओ इसको जरा, यक बिदु और यक सुत, अब दौलत खिंच गई। अब क्या हुआ, माल कम हो गया, उसी का ऑपोजिट। अब क्या होगा, डिप्रेशन, जरूरतें कहां से पूरी होंगी, बिल कहां से जाएंगे। और मिसाल है कि अल्लाह ना करे किसी के शौहर की जॉब चली गई, बिजनेस में इतना बड़ा घाटा पड़ा कि सब घर बार बेचना पड़ गया। अब क्या चाहिए था, अब आ जाओ उसकी तरफ, पहले तुम्हारे दुनियादारियां इतनी थी कि तुम फारिग ही नहीं थे, आज उधर दावत, आज मीटिंग, आज शॉपिंग, आज उधर सेल, आज उधर दिस एंड दैट, बड़े काम होते, पैसे वालों को काम भी बड़े बड़े होते, उनकी छोटी हमारे दसों जैसी जरूरतें थोड़ी होती हैं, जो है कर लेंगे, उनको तो गम पड़ जाता है जब उनके घर में कोई खुशी का मौका आता है। यकीन करें हलकान हो जाते हैं, ऐसे लगता है इन भूखे नंगों के पास पहले कुछ नहीं था, पहला और आखिरी मौका जिस पे इनको चाहिए, ए टू जी शुरू करते हैं तैयारी, और कोई लिया दिया पहले का रखा पहनना, वो कहते हैं बड़ी बुरी बात है, लोगों को पता चल जाएगा इनका अपना था जो पहन लिया। ठीक है, अब गम आया तो क्या हुआ, क्या चाहिए था, चलो निकली वो चीजें बीच में, रुकावट है ना, बीच से सब चीजें निकाल दो, करीब आ जाओ मेरे। अल्लाह कहते तुम इनमें खोए थे ना, फरिश्तों इसके सब खिलौने ले लो, सब दुनियादारी ले लो, आ जाओ अकेला, अब क्या चाहिए था, क्या अब मेरे पास आ जाओ। और जब इस तरह के हालात आते हैं तो गम और दुख की वजह से नहीं आते, फिर कहते हम परेशान होते हैं, फोकस नहीं होते, फिक्र भी तो बड़ी है ना, मियाँ की जॉब चली गई, मियाँ की जॉब चली गई, वो जॉब ढूंढे आपका क्या मसला है, नहीं फिर मैं उनमें फोकस नहीं होती। लिटरली लिटरली ऐसे इंसानों को हमने कई दफा पढ़ा है कि वो कहते हैं ना, वो मेरा ख्याल है बहादुर शाह जफर का एक शेर है जिसका खुलासा क्या है कि उसको आदमी ना कहो कि जिसको खुशी में रब याद नहीं और जिसको दुख में रब याद नहीं। आज हमारा हाल ये है, सर्दी बहुत है, सर्दी बहुत है, नहीं पढ़ सकते, नहीं सीख सकते, नहीं नमाज लूट सकते, अब गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, अब क्या, अब सब ठीक है, अब सब ठीक है, अब नहीं पढ़ सकते, आदत हो जाती है। तो आमन बिल्ला बहुत बड़ी सच्चाई है, हम कहते हैं हम अपनी भाग दौड़ से कुछ पा लेंगे, मिसाल है आपके मियाँ की जॉब चली गई, मिल जाएगी, उसको करने दे मेहनत। कितनी बीवियां जो अपने मर्दों को ये मशवरा दें कि देखिए मियाँ साहब आप दिल के बहुत अच्छे हैं, आप 5 नमाजें भी माशाल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन आप बहुत मसरूफ थे, अल्लाह ने आपको थोड़ा फारिग किया, चले बैठे पढ़ते हैं, आओ किताब सीखो, नहीं मौका मिलता था ना आपको, तो आप घर बैठ के सिगरेट फूंक रहे हैं, तो आप खोलें कुरान और नेट से खोलें, या कहीं जाएं, या किसी मस्जिद में जाएं, किसी उस्ताद को ढूंढे बैठ के पढ़े, सारी जिंदगी आपने ये दौलत तो जमा ही नहीं की इल्म की, करें तो क्या कहेंगे फिर आगे, हम भी, मैं पहले परेशान हूं तो मुझे और परेशान करें, हम सोचते हैं हम परेशान हो के अपनी परेशानियों का हल ढूंढेंगे, वल्लाही वल्लाही अल्लाह का फैसला क्या है, सूरत तलाक में जाके पढ़ेंगे आप कि वमई यत्तकिल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा या जल्लहू मखरजा, अल्लाह उसको मखरज एग्जिट दे देगा, जैसे ये आपके एग्जिट लगे होते हैं, वयरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब, वहां से रिस्क देगा जिसका बंदे ने गुमान ना किया होगा। आपने कम देखे होंगे या आपने ज्यादा देखे होंगे, मैंने कम देखे, लेकिन मैं पिछले 5 साल लूँ ना सिर्फ, ओनली 5 ईयर्स, तो अपनी फैमिली के कई घरानों का पूरा दायरा पूरा हो गया, समझ रहे हैं? पहले खूब दौलत थी, फिर अल्लाह ने ली, फिर खूब चक्की कटी ऐसी कि पिस के रह गए, बच्चों की फीसें भी नहीं दे रहे, और आप माशाल्लाह अल्लाह ने वो दायरा फिर पूरा करके फिर करोड़ों में डाल दिया, अल्लाह हो उस पे ईमान रखो। बहरहाल आगे चले, दूसरा ईमान का फैक्टर है बिलाखिरा, ईमान बिलाखिरा एक तोहफा है मोमिन के लिए। आप कहेंगे ये कैसे, लिखिए एक जुमला और फिर गौर कीजिएगा तो आप मेरी बात की तस्दीक करेंगे इंशाल्लाह, कि ईमान बिल आखरत ने तो मौत के डर से आजादी दे दी। बात बात है, काफिर को मौत से डर लगता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप देखिए, मैं नाम नहीं लेती मुल्कों के, आपके हमारे इर्द गिर्द के मुल्क हैं, बस 50 से ऊपर पड़ते हैं ना जब बूढ़े, तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर वो यूं खिड़कियों में बैठे यूं ओल्ड होम्स में से देख रहते हैं नीचे से आतों को जातों को, बेटे बेटियों को अपने हाथ से 18 साल की उम्र में रुख्सत कर दिया, दौलत चली गई, गवर्नमेंट ने पकड़ के आपको ओल्ड हाउसेस के घरों में डाल दिया, हर घर के बाहर एक बुड्ढा बुड्ढी बैठा होता है, कुछ जिंदगी नहीं, यकीन करें मैं आते जाते देखती थी रास्तों में, और मैं कहती थी ये मौत का इंतजार ही कर रहे हैं ना, और वाकई तो वाकई उसको चैन आए तो क्यों आए, उसके पास है क्या, काफिर ने चूंकि आगे कुछ रखा नहीं, इसलिए पहली बात है वो दुनिया में कहते हैं खाओ, ईट ड्रिंक बी मैरी, मौज मस्ती ऐश करो, बाबर बैश कोश के जहां दोबारा नीस्त। दूसरी सूरत क्या होती है कि आगे आखिर कुछ नहीं दिखती तो बीमारियां, अच्छा लंबी जिंदगी मिल गई ना, वेस्ट में जिंदगी बहुत लंबी है, आप महसूस करें, मैं कोई तारीफ नहीं कर रही इस वक्त मुसलमान मुल्कों या मुसलमानों की, लेकिन जिंदगी का जो लाइफ स्पैम है ये हमारे ईस्टर्न कंट्रीज में छोटा है, 40-50 के बाद मौत है हार्ट अटैक, क्योंकि खाने भी ऐसे हैं, कोलेस्ट्रॉल भारी हुआ पता ही नहीं चला एकदम हार्ट अटैक हो गया कुछ ना कुछ, जितना वेस्ट और उसके अराउंड ऊपर जाते जाएंगे ना, वहां 70-80 तो आम उम्र है, हम खुद अपनी आंखों से 80-90 के देखते हैं, यहाँ मुझे इतना भी इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन मैंने इससे पहले कुछ जगहों पे देखा है 80-90 के लोग बिल्कुल अपनी ट्रॉलियां खींचती भी नहीं, खींच के सड़कों पर जाते हैं, आम वहां का जो लाइफ स्पैम है ना, वो मैंने पता किया था जब लास्ट टाइम किसी से, तो 80s और 90s में नॉर्मल बात है, कोई 80-90 में, और अल्लाह ना करे आपको किसी हॉस्पिटल में जाना पड़ जाए किसी अपने ही मुसलमान भाई बहन की आदत को, और आप गुजरे उस बूढ़ों के वार्ड से, यकीन करें रोना आता है, इतना दुख होता है। उनके हॉस्पिटल बुड्ढे और बुढ़ियों से भरे हुए हैं जिनको कोई पूछने भी नहीं आता, क्योंकि है ही कुछ नहीं। मैं सोचती हूँ वाकई ये सफर करें तो किस पे करें। मोमिन को जब ईमान दिल आखिर होता है ना, वो कहते हैं इट्स फाइन, इस दुनिया में नहीं तो उधर, आज इधर तो कल उधर, आज दुनिया की चीजें इधर रखी हुई हैं, सामान है, चीजें इसको उधर भेजते हैं। आप देखेंगे देना आसान होता है, आगे आयत आ रही है उसको भी समझ लें। आगे या सलोना का माँ से युनफिकून आएगा कुलेल, आप खर्च करो। जब आखिरत का ईमान आता है ना, तो आप कह लीजिए कि वो चीजें जिसको दुनिया में एक बंदा बोझ समझ रहा होता है ना, वो उसके लिए खैर बन जाती है। कैसे? बस आप देखिए कि जब आप अल्लाह के रास्ते में कुछ देते हैं तो क्या सोचते हैं, गया गया लॉस्ट, आमिन यूमिनु बिल आखिरा में क्या हुआ गेट। ना सिर्फ ये कि सेविंग बन जाता है बल्कि इन्वेस्टमेंट बन जाता है। जिसने अपना फालतू यहां रखा ही नहीं तो उधर डाल दिया, तो बताएं उसको उधर जाने की खुशी है कि नहीं? आप सोचिए ना, आपको इस घर से, कोई आपका घर है उधर से चेंज होके दूसरे घर में जाना है, मोटा मोटा सब सामान भेज चुके हैं आप, बस जरूरत की चार छह चीजें हैं, बस पकाया खा लिया दो चार जोड़े, आपका दिल कहाँ लटकेगा उधर? मुझे पूछे कि रूटीन लाइफ कितनी बड़ी नेमत है कि चीज अपनी जगह से उठाओ और रख लो और बैगों और बस्तों में ना खोलनी पड़े। मैं कहती हूँ इससे बड़ी कोई नेमत ही नहीं। चार जोड़े ही हो लेकिन अपनी अलमारी में लटके हो, चार आपके प्लेटें डोंगे डिशे अपनी अलमारी से निकालो, मेरी नजर में ये लग्जरियस लाइफ है वल्लाही। लेकिन हमें एहसास नहीं होता क्योंकि हम यूज्ड टू है, घर से निकले घर में आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। जिस बंदे ने आखिरत के यकीन को अपने दिल पे रख लिया ना, उसके लिए आगे देना कुछ मुश्किल नहीं। कहते सिक्योर ना हो। अल्लाह के नबी का वाक्य, सदके की बकरी आई और खाना पीना था कुछ, रात को वापस आए, कहा आयशा बताओ क्या बना, बकरी के गोश्त का क्या बना? काला के नबी सब बट गई, बस एक दस्ती का गोश्त है जो मैंने आपके लिए रख लिया, शोल्डर का मीट अल्लाह के नबी को पसंद था, कहा बस एक छोटा सा टुकड़ा मैंने रख लिया, ये बच गया बाकी चली गई। आपने कहा आयशा नहीं, जुमला ठीक करो, बकिया कुल्लाहा, जो सारा गरीबों को मिस्कीनों को दे दी वो सब बच गया है, और ये जो तूने मेरे खाने के लिए रखा ये असल में जाया हो गया। तो सोच बदल जाती है जब इंसान को आखिरत यकीन आ जाता है, फिर तो बिल्कुल एक नई पर्सनैलिटी, लेना देना बन जाता है, देना लेना बन जाता है। हमारे यहाँ कहते हैं ना, लेने के देने पड़ गए, तो लिख लें ये जुमला मेरी तरफ से कि ईमान बिलाखिरा बंदे को लेने के देने डाल देता है। एक फिक्र होती है बंदा लेने वाला होता है, और दूसरी फिक्र होती है मैंने देना है, जिम्मेदारी का एहसास पैदा होता है। फिर मुसलसल नेकियां करता है बंदा आखिरत पे ईमान लाने के बाद, और उसको यकीन है कि मैंने एक दिन अपने रब के पास जाना है। कुछ तोहफे तो लेके जाने हैं ना, साथ साथ भेज दूँ, आखिरी दिन कितना कुछ सामान अपने साथ लेके जाऊंगा, वहां तो एक लगेज भी साथ नहीं जाएगा जो यहां फिर भी जाने देते हैं। उसके बाद अगला ईमान, ईमान बिल मलाइका, फरिश्तों पे ईमान। ईमान बिल मलाइका इंसान को यकीन दिलाता है कि ये दुनिया ऑटोमेशन पे नहीं चल रही, ये जो हम कहते हैं ना बस चल रहा है, पहिया घूम रहा है, इट्स ऑटोमेटिक, नहीं। उसको पता है इस कायनात में अल्लाह के इरादे की हुक्मरानी है, जो वो चाहता है वो होता है ना, जो अल्लाह चाहेगा, वमा शाह अल्लाह, जो अल्लाह चाहता है, लिहाजा उसकी मर्जी से होगा, और उसकी इताअत और बंदगी करने वाली लातादात मखलूक है जो हमें नजर नहीं आती फरिश्तों की सूरत में। यानी ईमान बिन मलाइका बंदे को इस चीज का यकीन दिला देता है कि अल्लाह का इरादा गालिब है, वमा तशाउन इल्ला यशाअल्लाह रब्बुल आलमीन, तुम जो चाहोगे वो थोड़ी होगा, जो अल्लाह चाहेगा वो होगा। और अल्लाह अपने इरादे की तकमील जिस मखलूक से करवाता है उनको फरिश्ते कहते हैं। फिर आगे देखिए ईमान बिल किताब, ये हमें दो लफ्जों में एक बात सिखा देता है, और वो क्या कि जिस कानून में ये कायनात बंधी हुई है ना, सूरज चांद सितारे, हमें अल्फाज की सूरत में लिख के दे दिया गया है। बड़ा ऊंचा जुमला है, आप सब नहीं नोट कर सकेंगे, मुश्किल जुमला है। जिस कानून में कायनात बंधी हुई है, सूरज चांद सितारे अल्लाह के ओबीडियंट है ना, हमें वो किताब की सूरत में लिख के दे दिए गए जो इस वक्त आपके और मेरे सामने, और जो कौम पढ़ने की बजाय सिर्फ इसके वजीफे करे, बताइए क्या वो इस कानून फितरत का हिस्सा हो सकती है? तब हम ईमान है कि ये अल्लाह की तरफ से लिखी हुई एक चीज है, गाइडलाइन है, जो जिंदगी बसर करो। और फिर ईमान बिन नबीजीन, अंबिया पे ईमान, इससे तो बंदे के अंदर जितना ईमान बिल नबी ज्यादा होगा ना, नबी इसलिए कह रही हूँ कि हम उसी एक में सबको ले लेते हैं, हिकमत को लेगी। आप चाहते हैं हिकमत आए, दानिश, ये खजाने चाहते हैं ना, तो नबियों पर ईमान पक्का कर ले। पता चल जाता है कि अल्लाह ताला ने कुछ बंदों को ऐसे अपने काम के लिए चुना और फिर उनको जिंदगी गुजारने के तरीके दे दिए। नबी कौन होते हैं? दानिश और हिकमत के खजाने। उनसे कुर्ब ले लीजिए, आपकी जिंदगी में भी ये चीजें आएंगी। और इसके बाद आप देखिए कि नबी पे ईमान है तो रसूल पे भी ईमान है। इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला की रहमत ने किसी दौर में भी इंसानों को हिदायत की बरकत से गाफिल नहीं रखा। वल्लज़ीना हाजरू, और जिन्होंने हिजरत की, कौन सी हिजरत? आप कहते हैं हाय कभी हमें भी मौका मिले, हम मक्का से मदीना हिजरत करते, कितना मजा आता। रास्ते में खाते पीते जाते, स्नैक्स ले जाते, वो व्हाट अ प्लान, सो गुड। तो देखिए मक्का से मदीना की हिजरत अब खत्म। अल्लाह के नबी ने साफ कह दिया, ला हिजरत बादल फतह। फतेह मक्का जिस दिन हो गया आपका दौर सेट। अब जो मक्का में बैठे रहो, सारी जिंदगी भी चाहोगे तो दोबारा तुम वो हिजरत का सवाब नहीं पा सकते जो लेने वाले ले गए। टाइम टाइम की बात है, मेरे और आपकी बात है, तो मेरे और आपके पास हिजरत के अब कौन से मौके हैं, ये सवाल है। तो पहला मौका सही बुखारी में है कि अल मुहाजिरु मन हजरा मा नहल्लाहु अन्हु। लिख लें, और ये हदीस याद कर सकें तो करके ग्रुप्स में एक दूसरे को सुना लें कि मुहाजिर कौन है जो हर उस चीज से हिजरत करे जिससे अल्लाह ने रोका है। बुरी आदतें, बुरी रस्में, बुरे तौर तरीके, मुजाहिदा, इसी को मुजाहिदा कहते हैं ना, सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को अल्लाह वाला बना दे। और फिर इस हिजरत के दर्जे, ये हम बड़ी बातें ज्यादा करेंगे सूरत निसा में, वहां बहुत डिटेल से ये मौजू आएगा कि फिर दारुल कुफर से भी हिजरत करनी पड़े तो करो। इसके बाद आगे देखिए जिहाद, जाहदा वजाहदू फी सबीलिल्लाह। जिहाद क्या है? किसी मकसद को हासिल करने के लिए इंतहाई कोशिश करना। जिहाद से मुराद जंग नहीं है सिर्फ, समझिएगा। जंग के लिए तो किताल का लफ्ज आता है, जिहाद इससे ज्यादा ब्रॉड वर्ड है, वसी मफहूम रखता है। हर किस्म की जिद्दोजहद, एफर्ट, जुबान से, कलम से, हाथ पांव से, हर मुमकिन तरीके से बंदा दौड़ धूप करे, कोशिश करे कि अल्लाह के दीन को गालिब करे। पहले तो अपने इस 5 से 6 फुट पे, और इसके बाद फिर माशरे पे और दुनिया पे, और आखिर इसमें जान भी देनी पड़े तो दे दो। गोया के मुहाजिर वो है जिसके दिल में हर वक्त फिकर एक है कि मैंने अल्लाह के दीन को उसकी जमीन पे गालिब करना है। इतने काम करोगे तो उलाइका यरजून रहमत अल्लाह, अब उम्मीद रखो। अच्छा, हम कब उम्मीद रखते हैं? कलमा पढ़ लिया ना, बस उम्मीद में आ गए, उम्मीद से हो गए, बस जन्नत में जाएंगे। जब तक आपकी जिंदगी में ईमान के बाद हिजरत और जिहाद नहीं आता, आपका ईमान का दावा झूठा है। ऐसे टेस्ट होते हैं ना, तेजाब डाल डाल के टेस्ट करवाते हैं हम, कभी कुछ कभी कुछ। याद रखिए कि जिंदगी में अगर कोई मुश्किल आए और आप उसके मुकाबले में जम गए, फिर आप सच्चे मोमिन हैं, फिर उम्मीदें रखें। अल्लाहु गफूर और रहीम, बंदा कहता है अल्लाह कोशिश तो बड़ी करता हूँ, सहाबा ने भी की लेकिन हो गया कत्ले खता का, कोई बात नहीं, डोंट वरी, मैं मदद करूंगा, मैं बख्शूंगा। तसल्ली की जा रही है। गफूरियत की सिफत क्या है? बस आसान लफ्जों में लिखना है कि अल्लाह गफूर क्या है, कि जहन्नुम से बचा ले, बस जाओ तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए, मैं नहीं पकड़ूंगा तुम्हें। इससे जान में जान आएगी क़यामत के दिन लोगों की, हाय आग में नहीं चलो बाहर खड़ा रहूंगा, खैर है का नहीं, रहीम भी हो कि जो आप मेरी रहमत से जन्नत में चले जाओ। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला कहता है कि जहन्नुम मेरा अदल है और जन्नत मेरा रहम है। यानी जब अल्लाह अदल पे आ जाएगा ना, जिसका आप इंग्लिश में कहें जस्टिस, तो फिर अल्लाह सबको जहन्नुम में डाल दे। सीधी सी बात है, एक बंदा बशर नहीं बचे, सब जहन्नुम है, क्योंकि हम में से किसी के पास इतने अमल नहीं है कि हम जहन्नुम से बचें। और जन्नत के अल्लाह की रहमत, किसी के पास कोई अमल ही नहीं है कि जन्नत खरीद सके। अपनी गफूरियत की, बख्शिश की सह से हमारे गुनाहों को माफ करेगा और रहम के साथ हमें और भी अजर देगा। तो खुलासा क्या निकला इतनी आयतों का, कि मोमिन की पूरी जिंदगी मुजाहिदे की जिंदगी है। हर वक्त तैयार रहे, हर घड़ी, हर वो कहते हैं ना, हर घड़ी तैयार, मुजाहिदे के लिए तैयार है। अल्लाह के हुक्म आते हैं, सो बिस्मिल्ला, ख्वाहिशात को रोकना पड़ता है, बिस्मिल्ला, अल्लाह तेरा शुक्र, तू कह तो सही कुछ मुझे, मैं करके दिखाती हूँ। कौम और बिरादरी की गलत रस्मों से टकराएगा, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, आज तो बहुत ही मजा आया। अल्लाह के लिए किसी को कह दिया कि मैं नहीं कर सकता ये काम। शैतानी कुव्वतों से कभी मुकाबला आप करते हैं, और जरूरत पड़े तो हुक्मरानों के सामने भी कलमा हक बुलंद करना पड़ता है, जान भी दे सकते हैं। और दूसरी बात इन आयतों से पता चली कि मुसलमान की जिंदगी की बका हिजरत और जिहाद में। जब तक मुसलमानों ने ये दो रास्ते पकड़े रहे, काफिर उनसे डरते रहे, आज हम इनको छोड़े हुए हैं तो जिल्लत और ख्वारी हमारे सामने है।
إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم.
अब अगली आयत बज़ाहर बड़ी आपको अलग आयत लगेगी, लेकिन यहां से आपको सहाबे कराम की खूबसूरत सोच दिखेगी। एक और सवाल है, यसलूना का, वो आपसे सवाल करते हैं, कौन करते हैं, लिखिए सहाबे कराम। पिछला सवाल किसका था? मुशरिकीने मक्का का। किसके बारे में सवाल करते हैं? ये मैं आयतें दोनों साथ पढ़ के, जहां तक आयत का है मफहूम है, मैं इकट्ठी पढ़ूंगी। सहाबा आपसे सवाल करते हैं किस बारे में? अनिल खम्र वल मैसर, शराब और जुए के बारे में, कि शराब के बारे में क्या हुक्म है, जुए के बारे में क्या हुक्म है। कुल फीही मा इस्मन कबीर, कह दीजिए इन दोनों में बहुत बड़ा गुना है, ठीक है, पहली बात। हाँ, लेकिन वह मुनाफियो लिन्नास, लोगों के लिए कुछ नफे भी हैं, लेकिन याद रखो वह इस्मुहुमा, इन दोनों का गुना अकबरों में नफ़ीमा, इनके नफे से भी बेहतर है। बस यहां रुकेंगे, इनके नफे से भी बड़ा है। अब यहाँ आयत पूरी नहीं हुई, मफ़हूम पूरा हो गया, इसलिए एक छोटी सी तोय लगी हुई है, तो ठीक है। आगे साथ ही एक ही आयत में दो सवाल हैं। अब आपसे कल असाइनमेंट में ये सवाल हो सकता है कि कुरान पाक की वो कौन सी आयत है जिस एक ही आयत में दो दफा यसलूनका की बात है, तो वो ये आयत है। वयसलूनका माज़ा युन्फिकून, और वो आपसे सवाल करते हैं क्या कुछ खर्च करें। क्या ये सवाल पहले हुआ था? बार बार क्यों पूछ रहे थे? अमल का इरादा था। हम कहते पूछा था, जवाब नहीं मिला, शुक्र है, भूल गए, हम कह देंगे जवाब ही नहीं मिला, मौलवी साहब ने कह दिया था। साहबा के दिल से उठते थे सवाल, क्या आप खर्च करें? वहां क्या जवाब दिया था? लिल वालिदैन वल अक्रबीन, किसको दो? यहां बता दिया क्या दो, कुलिल अफ का, जरूरत से ज्यादा सब कुछ दे दो। अभी इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, इसी तरह अल्लाह बयान करता है तुम्हारे लिए आयतें, लअल्लकुम तत्तफक्करून, ताकि तुम गौर व फिक्र करो, तफक्कुर करो। अब बास कहते हैं कि फिर दुनिया वाल आखिर इसके साथ है, लेकिन आयत के साथ आगे, इसलिए इसको हम आगे करेंगे। अब इन दो आयतों को जरा थोड़ा सा समझिएगा। शराब उस दौर में पानी की तरह पी जाती थी। छोटा सा नोट ले लीजिए मेरे से इस मौजू पे, क्योंकि ये मौजू आज पहली दफा आया है, तीन दफा आएगा कुरान पाक में। आप कह लें कि यहां से शरीयत का एक बुनियादी खाका हमारे सामने आ रहा है, ब्लूप्रिंट होता है ना, पहले घर बनने से पहले ब्लूप्रिंट बनाते हैं, फिर उसमें रंग भरते हैं। पहले कुछ अहकामात आ चुके हैं, कुछ अब आ रहे हैं। मक्का में रहते हुए मुसलमान जब थे, इर्द गिर्द बिल्कुल शराब ऐसे पी जाती थी जैसे आज वेस्टर्न सोसाइटीज में पी जाती है, जिसको कहते हैं ना कि असल पीने की चीज तो शराब है, पानी तो धोने धिलाने के काम आता है। ये हालात है। अभी कोई हुक्म नहीं आया, कोई इशारा नहीं आया, अब यहाँ से आपको एक बहुत खूबसूरत अपनी पर्सनैलिटी का एक नुक्ता मिलेगा अगर हमारे अंदर ये मौजूद है साहबा की तरह। कोई हिंट नहीं आया अभी के शराब हराम है, हल्का सा एक हिंट हम पढ़ते हैं, मैं आगे जाके जहाँ आएगी आयत तो बताऊंगी। मक्की सूरतों में सिर्फ एक इशारा मिला था कि उसको अल्लाह ताला ने रिस्क तैयब से अलग कर दिया, वह सुकरन, और तुम कुछ नशावर चीज बनाते हो, पानी की तरह शराब पीते थे, देर इज नो क्वेश्चन, सब पी रहे थे। करते क्या थे अरब लोग, अब समझिएगा, क्योंकि ये आयत बहुत सारे लोग इसमें बस बहुलत जाते हैं। खूब शराब पीते, जब शराब पी लेते तो नशे में धुत हो जाते, जब नशे में धुत होते तो खुली जगहों पे जाके मुकाबला करते, किस चीज का, जो जिसका ऊंट उनके हाथ लगता, एनिमल्स, उसको जाके स्लॉटर करते। शराब के नशे में उनको कुछ नहीं पता, बहुत सारा गोश्त जमा हो जाता, और जब गोश्त जमा होता जो इर्द गिर्द के गरीब मस्कीन थे ना वो आ जाते, तो ये खूब दो दो हाथ से उनको बांटते। यानी शराब के नशे में धुत होकर खूब सदका खैरात करते, ठीक है। शराब को करुम कहते थे, करीम लफ्ज़ सुना है ना, अल्लाह सुब्हान तआला का नाम है। करुम कहते हैं अंगूर की बेल को, अंगूर से बनी हुई चीज। करीम कहते हैं बहुत सॉफ्ट डेलिकेट पर्सन को, यानी शराब पीकर खूब करीम हो जाते थे। करीम को इंग्लिश में कहूंगी तो फौरन समझ जाएंगे अब जनरस, क्योंकि होश नहीं होती थी। अब जब शराब के नशे में, तो मेरा ऊंट काट दिया, आपका काट दिया, जिसका कर दिया उसका कर दिया, अब जब वो गोश्त तो बट गया, गरीब ले गए। जब होश आता तो पता चलता, वो कहते ये आपने क्या किया, आपने तो मेरा इतना महंगा ऊंट कत्ल कर दिया, मार दिया। वो क्या के बोलो, क्या कीमत मांगते हो। अब जिस मालिक का ऊंट जो जिबा हो गया किसी के हाथों, और वो कह रहा कोई बात नहीं, पैसे मांगो, कितने मांगते हो मैं दे दूंगा, तो जितने का वो कहता उससे भी ज्यादा कीमत कह के वो उसको मुंह मांगी कीमत मांगता, ये झट से उसको दे देते, और अपने इस अमल पे खुशियां मनाते कि देखो हम कितने जेनरस हैं, कि हम एक तरफ तो गरीबों की मदद कर रहे हैं, दूसरी तरफ इनके ऊंट की कीमत खुलेआम दे रहे हैं। होता क्या, नंबर एक शराब पीकर हुलगपाड़ा करते, फिर उसमें जो लौंडियों को नचवाते गाते बजाते नफ्स की बातें कर रहे होते, होता तो अपने ही से था। शराब जो है खमर उसको कहते हैं, क्यों, क्योंकि लिख लें कि इंसान के जिस्म में दो ऐसे जज्बे हैं जिसको शराब दबा देती है, नंबर एक खौफ और नंबर दो हया। खौफ फियर एंड हया मोडेस्टी। शराब बंदे के इन दो जज्बों को दबा देती है। बहुत सारे काम बंदा आम हालात में करना चाहता है लेकिन उसको खौफ होता है कि लोग मुझे क्या कहेंगे, तो हम नहीं करते ना। जैसे अभी ऊंट की मिसाल दी है, एक बाहोश बंदा जाके किसी का ऊंट जिबा करेगा, उसको खौफ है ना कि पकड़ा जाऊंगा, ठीक है। दूसरी चीज हया है, एक बाहोश बंदा बाहया होता है, कोई कपड़े अपने उतार सकता है खड़ा खड़ा, कोई गंदे काम कर सकता है। शराब बंदे की इन दो जज्बों को दबा देती है, और आप कह लें कि ये दो फियर्स जिंदगी की बुनियाद है। शराब पीते थे अपने नफ्स के लिए, शराब बंदे को बेसुध कर देती है ना, बिल्कुल फरार हालात से, जैसे भी है बस नशे में डूबे रहो। वो कहते हैं ना कि जिंदगी का सफर बड़ा तवील था, मैं खाने ने उसको आसान कर दिया, बस शराब पी के धुत बैठे रहे, असल में एस्केपिज्म है। अब जब ये काम करके वो उसमें अपने नशे में, जिसमें उनको नहीं पता था, तो खुद ब खुद नेकी हो गई ना उनसे, गरीबों को माल मिल गया और दिस एंड दैट, और फखर क्या करते कि देखो क्या हुआ अगर पीते पिलाते हैं, गरीबों का फायदा नहीं होता, और उस पे वो अपने आप को बहुत ज्यादा थपथपाते थे कि देखो जी हम शराब के नशे में बहुत चैरिटी करते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं मान लिया, अल्लाह निगेट नहीं करते, लेकिन कहा कुल फी ही मा मुनाफियुन, हाँ फायदे मुनाफियुन लिन्नास, लोगों को कुछ फायदा हो जाता है, ठीक है, लेकिन इसमन कबीर, गुना तो बहुत बड़ा है। आप इस आयत को जरा गौर से सुनते वक्त कुछ आपके जहन में आया था, चैरिटी शोज, चैरिटी के नाम पे नाच गाना कॉन्सर्ट्स, अजीबोगरीब हरकतें, और फिर उस पैसे को दे देना कैंसर वालों को। मैंने खुद एक तस्वीर भी खींची हुई है मेरे फोन में, किसी ट्रेन में थे, पता नहीं किस मुल्क की बात है, तो ऊपर कोई हेडिंग थी, उसको देख के मेरी नजर पड़ी, तो कोई औरतें डांसिंग थी, तो उसके नीचे लिखा हुआ था कि ये फलां जगह कॉन्सर्ट हो रहा है डांसिंग का जिस, और नीचे छोटी सी लाइन थी कि ये मनी सारी कैंसर के मरीजों को डोनेट की जाएगी। खुद खराबी, गंदगी, बेहयाई पैदा की, नफ्स की ख्वाहिश, और उसके बाद का के फायदा लोगों को तो होता है। क्या आज मुसलमानों में भी क्या ये रुझान नहीं आ गए? जलजला जदगान की मदद के लिए फलां अदाकारा आएंगे अपने फन का इजहार टीवी पे, मीडिया पे। आप मुझे सच बताइए, जिसने अल्लाह के लिए देना है, मिसाल लीजिए एक औरत है, उसके बच्चे को कैंसर है, क्या वो कहेगी पहले मुझे गाना सुनाओ फिर पैसे दूंगी? उसकी तो जान पे बनी हुई है। ये जो अपने नशे में और लय में आके सारी ख्वाहिशें नफ्स की पूरी करना और कहना देखो सवाब भी तो हो रही है ना, ये है आज के दौर में बहुत सारे लोगों का लेम एक्सक्यूज। क्या फर्क पड़ता है, फायदा भी तो लोगों का हो जाता है। अल्लाह कहते हैं अपना फायदा अपने पास रखो, ठीक है तुम थोड़ा सा फायदा दे रहे हो, नुकसान कितना दे रहे हो सोसाइटी को, गंदगी, बेहयाई, करप्शन दे रहे हो। यही असूल आज बहुत सारे लोग फिल्मों के लिए लगाते हैं, कहते क्या फर्क पड़ता है फिल्म से, कितनी नसीहत आमोज होती है। वो देखो ना घर टूट रहा था, फिर उसने बताया ना छोड़ना, फिर वो लड़की ने बात मान ली तो चली गई, तो घर बच गया। ये बच्चियों को सिखाते हैं, तो वो तो आपकी नानी भी सिखा सकती थी, दादी का घर टूटा नहीं, नानी का नहीं, पुप्पो, चचा, मामू, रियल स्टोरी से नहीं सीखा। और वो हीरोइन से सिर्फ बच्ची ने ये नहीं सीखा बल्कि उसने बेहुदा लिबास नहीं सीखे, गंदी हरकतें नहीं सीखी। नसीहत लेने वाले सच बताएं कितने हैं जो फिल्में देख देख के अपनी अच्छी बीवियां बन गई, वहां से तो और ही डिप्रेशन लेके उठते हैं कि हीरोइन की तो इतने लाड देखता है हीरो, वो रूठ जाती है तो उसके पीछे पीछे फिरता है, फूल देता है उसको, मियाँ साहब देते नहीं आप, बस मेरा तो घर ही नहीं बनेगा। सच बताइए, ये कानून है जिंदगी का, असूल बना लीजिए, जिस चीज में थोड़ा फायदा समझ के आप उसका ज्यादा नुकसान लेते हैं वो आपके हक में कभी खैर नहीं हो सकती। तो अल्लाह कहते हैं आप छोड़ दो। ये पहला हुक्म है हुरमते शराब का, दूसरा हुक्म हम पढ़ेंगे सूरत निसा में, और तीसरा पढ़ेंगे सूरत मायदा में। कुछ लोगों ने इस आयत के बाद शराब छोड़ दी क्योंकि उनको सिर्फ इशारा चाहिए होता है, जैसे दिया सलाई है ना, कट करो ना तो वो यूं आग पकड़ती है, और कुछ को आग में भी डाल दें तो उनको समझ नहीं आती, वो फिर भी नहीं जलते। इतना कुरान की आग में भी जलेंगे, अमल फिर नहीं उनका बदलता। तो इशारतन यहां से इस्लाम का मिजाज भी देखिए, एक शराबी है, पहले दिन उसको वो हराम का लफ्ज दिया जाता वो नहीं मानता। आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, यहाँ बस इतनी बात करूंगी, तीन जगह आना है और जहां हतमी बात होगी वहां शिद्दत से बात होगी कि शराब कितनी बुरी चीज है। उम्मुल खबाइस कहते हैं, नॉन मुस्लिम लोगों की कहानी है, वो कहते हैं कि तुम शराब खाने बंद कर दो तो मैं आधे से ज्यादा हॉस्पिटल और पागल खाने बंद करवा दूंगा। जितने रोड एक्सीडेंट्स होते हैं शराब की वजह से, लिवर कैंसर दिखाई लें, दूसरी चीजें, उनको तो हम छोड़ दें, आज जितनी करप्शन है, गंदगी, उसके पीछे शराब है। उम्मुल खबाइस कहते हैं कि जहां शराब होगी वहां सब होगा। एक औरत थी, वो किसी दीन वाले को बहका के ले गई, रिवायत में आते बनी इसराइली वाक्य, कहने लगी कि या तो कुफर करो, अल्लाह का इनकार करो, या मेरे साथ जिना करो, और या इस बच्चे को कत्ल कर दो। उसने अस्तग़फिरुल्लाह, और चौथा चीज ये कि ये शराब की बोतल है ये पी लो। उसने कहा कुफर ये तो हो ही नहीं सकता, जिना ये तो बहुत बुरी बात है, कत्ल तो हराम है। इतना मजबूर किया कि कहने लगा लगता है कि ये निस्बतन छोटा गुनाह है, शराब पी ली, शराब के नशे में बाकी सारे काम भी हो गए। उम्मुल खवाज जहां एक होगी, और यहां बात सबको समझ आई कि मैसर और शराब इकट्ठी क्यों आई, जुआ खेलते थे, यानी उस पैसे को बड़ी बड़ी रकम पे लगा देते थे, और नतीजा क्या होता कि उसमें खुशियां मनाते थे कि देखो हम चलो कोई बात नहीं शराब पीते हैं लेकिन लोगों को फायदे दे देते हैं। तो अल्लाह सुबहान तआला कहते हैं ऐसा ना करो, तुम्हें फायदा नहीं होगा। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि शराब और जुआ यहाँ इकट्ठा क्यों आ गया? जुए को भी समझ जाइए, थोड़ा सा इशारतन समझा देती हूँ। देखिए दो लफ्ज लिखिए, बिल्कुल समझ आ जाएगा आपको फर्क। एक लफ्ज है रिस्क और एक है चांस। इस्लाम कहता है बिजनेस करो, कारोबार करो, कारोबार में क्या है, रिस्क है ना। आप 1,000 पाउंड लगाते हैं, वो 2,000 भी बन जाएंगे और वो 1,000 से 200 भी रह जाएंगे, रिस्क है। इसमें दूसरी चीज आपकी एफर्ट लगती है, मेहनत करो नो प्रॉब्लम, मेहनत भी है रिस्क भी है। दूसरी तरफ है चांस, और वो क्या है, एक लॉटरी का टिकट खरीद लो, लॉटो प्राइस बॉन्ड खरीद लो, कोई ऐसी चीज खरीद लो। इसमें क्या आपने किया, चांस लिया, आपका नंबर आ गया, आपका हो गया, आपका ना आया तो आपका वो जो 2 रुपए की लॉटरी आई थी वो भी गई, ये जायज नहीं है। दोनों में जो चीज मुश्तरक है ना वो आसानी है। शराबी भी मेहनत से जान चुड़ाता है, बैठ के शराब पीता रहता है और बीवियां काम करती रहती हैं ऐसे मर्दों की, ठीक है। इसी तरह जिस बंदे को गैम्बलिंग की और जुए की आदत पड़ जाती है वो निकम्मे और बेकार हो जाते हैं। आपने पैसा जो कहीं लगा दिया, अब यहां से ये भी समझ लें इस्लाम कितना इस पे दो टोक है। तीसरे पारे में ये बातें खुल के आएंगी इंशाल्लाह। आपके पास 1000 पाउंड था, आप किसी को देते हैं, सदका करते हैं, बेहतरीन है, नो प्रॉब्लम, कर्ज दे दें, अच्छी बात है, आपको अजर होगा। आप कहते हैं नहीं नहीं मैं नहीं, मैं इसको 1000 देता हूं और इसके इवज ये मुझे हर महीने 100 पाउंड दे दे, 100 पाउंड भी दे दे फिक्स, और जब मेरा दिल चाहे मैं इससे अपने 1000 वापिस कर दूं। यूसर है, जुआ है, गैम्बलिंग है। क्यों? कि जब आपके पास रिस्क नहीं है तो आप तो दूसरे पर जुल्म कर रहे हैं, ठीक है। ये बातें वहां जाके पढ़ेंगे, इशारतन यहां समझ जाए कि दोनों में एक बंदा जो है वो बेखुद रहना चाहता है। शराबियों की बीवियों को पूछ लें और जवारियों की बीवियों को देख लें, दोनों की जिंदगी बेवा वाली होती है। सारी सारी रात शराबें पी के या पान सट्टे और ऐसे पत्ते खेलते रहेंगे और सारा सारा दिन सोए पड़े रहे होंगे, ना उनको इंसानी मामलात की फिक्र है, और बीवी बहन बेटी की तमीज भी मिट जाती है शराब के नशे में। जब पैसा नहीं मिलता, नशा टूटता है, तो अपनी बीवियों को भी बेच जाते हैं। ये कहानी आपने फिल्मों में भी बड़ी देखी होंगी कि ये हालात है। इस्लाम ये नहीं चाहता। इस्लाम कहते हैं मेहनत करो, जिंदगी का मकसद समझो। जवारी तो अपनी जिंदगी से आधी जिंदगी खत्म करता है, शराबी नशे के दुत में होके अपनी जिंदगी खत्म करता है। तो अल्लाह सुबहान तआला कहता है कि वो बंदा जो एक छाबड़ी लगा रहा है, 500 रुपए का सामान लगा के 50 रुपए दिन के लेके आना है, वो उस बंदे से बेहतर है जिसने अपना 1000 रुपए इधर लगा के और दूसरों के हाथों को देखता है। फिर इसी में आप देखिए कि जब जिंदगी में इस किस्म की चीजें आ जाती हैं ना, तो फिर नतीजा क्या होता है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का वक्त नहीं होता। इन लोगों के पास हजारों लाखों करोड़ों भी होना, ये कंगले होते हैं, चांस पे जो दे दिए। बाद लोग जुए में अपनी बीवी तक हार के आ जाते हैं। इस्लाम कतन इसकी इजाजत नहीं देता। एक छोटा सा नुकता है, शायद आप इसको एंजॉय करें ना करें, लेकिन है मौजूद, इसलिए बताना चाहूंगी। आप देखिए कि सवाल क्या था शराब और जुए के बारे में, ठीक है। कुल्फी हिमा इस्मन कबीर व मनाफी लिन्नास, ठीक, नफा है लोगों के लिए वो इस्म हुमा। अब यहां देखिए, जब लोगों के लिए नफा है तो नफे का ऑपोजिट क्या होना चाहिए? नुकसान। होना क्या चाहिए था कि इसमें लोगों के लिए नफा है लेकिन इसका नुकसान या इसका जरर बड़ा है। जरर की बजाय यहां इस्म का लफ्ज है, गुना। ये बारीक नुकता है, अगर आपको समझ आता है तो समझें कि कितने खूबसूरत तरीके से अल्लाह सुबहान तआला ने यहाँ इस चीज को खोल के रख दिया कि शराब और जुआ जैसे आज के दौर में जायज नहीं, कल के दौर में भी जायज नहीं था, लेकिन लोग इसका नाम ले लेकर इस तरह इसको साबित करते हैं। आज उतने शेर जमजम के पानी पे नहीं है जितने शराब पे, उतनी मस्जिदें आबाद नहीं है जितने मैखाने आबाद है। एक जाम में से दूसरा जाम कहता है मुझे भी हो, सर उठा के। ये सारी कहानियां क्या हैं? और दुनिया ने आज इतनी कोशिश की है शराब रोकने की, रिपोर्ट्स आगे लिखाऊंगी सूरत निसा में इंशाल्लाह, कि अमेरिका में कंपेन चली थी 19वीं सेंचुरी के बिल्कुल शुरू में, तकरीबन 10 से 15 साल के बीच का कोई वक्त है, अमेरिका में शराब बैन थी जिसका अपने लफ्जों में आपके हराम थी, नहीं छोड़ सके लोग। अखीर उनको अपना वो कानून लेना पड़ा कि लोग इतनी ज्यादा रोक उस पे, मतलब कहना चाहिए ना, जब आप सारी ना एक रूल माने तो हमने किसके लिए बनाना है। ये बात थी इस्लाम ने कैसे खूबसूरत दस किया दिल की, ये बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर कर दिया। आगे आप पढ़ेंगे नमाज से पहले ना पियो, तीसरे में आखिरी आखिरी हुक्म दिया, और जब आखिरी हुक्म आया तो मुंह को लगे हुए जाम टूटे। नया कंसाइनमेंट आया हुआ था शराब का मदीना में, और सहाबा ने जब वो हुक्म सुने मटके फोड़े, कई दिन तक मदीने की गलियों में शराब की बू रही। अल्लाह के नबी, यहाँ जीउस मौजूद है, हम उनको बेच दें? कहा नहीं, जो पी नहीं सकते वो बेच भी नहीं सकते, शराब हराम। 10 चीजों पे लाना था सिर्फ इसे एक शराब की वजह से, पीने अल्लाह पिलाने अल्लाह जिसके लिए वो सब इतना, और सहाबा ने उसको यूं तोड़ा, फिक्र ही नहीं, सब छूट गया। आज कहते नहीं ये पॉसिबल ही नहीं, ह्यूमन ही के शराब पी के छोड़ सके, सहाबा ने किया, क्योंकि ईमान का नशा शराब के नशे से बड़ा होता है, अल्लाह से मोहब्बत का नशा इससे बहुत बड़ा होता है, इससे सेहत खराब, इससे अखलाक खराब, बेहयाई इसमें आती। आप देखिए चोरियां, कत्ल, डाके सब इसमें आते हैं। और इबादत का वक्त याद रहता है, तहारत होती है, किस तरह की ये मुश्किलात है। इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं अगर चंद फायदे, आज जो लोग शराब बेचते हैं मुसलमानों के, उनको अल्लाह कह रहे मुनाफे लिन्नास, हाँ तुम्हारी सेल बढ़ जाती है। वइस्मुहुमा अकबरु मिन नफ्यिहिमा, कितना को तुम बढ़ाओगे जो गुनाह अपने सर पे लेके उठते हो। और आप देखिए जिसके कारोबार में ये चीजें हों, क्या वो दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह हमारा रिस्क बढ़े? उनकी माएं दुआ कर सकती हैं कि मेरे बेटे की आमदन बढ़े? शराब बिक, एक शराब की बोतल बिक के कहाँ कहाँ जाती है। अगर बंदा इसको सुन ले और उसका सहाबा की तरह का ईमान हो, तो कभी भी वो सोच नहीं सकता कि मैंने इतनी गंदी चीज भी बेची कि जिसके बाद उसका आखिरी अंजाम बेहयाई और बुराई में। इसलिए अब आगे आप देखिए कि खर्च की बात है।
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما